അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യൻ വആദമു ബൈനൽ മായ് വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്, ഫഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഉദ്ഊ ഇലാ സബീലി റബ്ബിക ബിൽ ഹിക്മതി വൽ മൗഇസതിൽ ഹസന. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج کی یہ مبارک اور مقدس تقریب دعائے حفظ البحر کے چلے کی تکمیل کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد والد ماجد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے کو شروع کیا, اور جیسا کہ ابتدا میں میں نے آیت تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ. یہی طریقہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں ریسرچ کی کہ کس طرح بندوں کو رب سے ملایا جائے, جو ٹوٹا ہوا ایک تعلق ہے اسے دوبارہ سے جوڑا جائے, اور اس سلسلے میں جو جو چیزیں ممکن ہو سکی تھیں انہوں نے اس سلسلے میں وہ کی. مثال کے طور پر اس درگاہ شریف کو قائم ہوئے 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا. یہاں پر جتنی تقریبات آپ دیکھ رہے ہیں, نوچندی جمعرات کو شب داری کا پروگرام, ہر جمعرات کو ذکر حلقہ کا پروگرام, ہر جمعے کو ختم خواجگان کا پروگرام, ہر اتوار کو مریدین کے لیے روحانی تربیتی نشست, اور اسی طرح 17 اور 27 کو بزرگان دین کی فاتحہ, یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ تمام مقدس راتیں, شب برات, شب معراج, شب میلاد, شب قدر, شب عاشورہ اور جتنی بھی مقدس راتیں ہیں ان میں جاگنے کا اہتمام, یہ تمام کا تمام جتنا بھی ہوا اس کا سہرا حضرت اشرف المشائخ کے سر. انہوں نے یہ تمام چیزیں شروع کی اور انشاءاللہ یہ جب تک ہوتی رہیں گی اس کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. جتنے لوگ فیض حاصل کریں گے, جتنے لوگ ہدایت حاصل کریں گے, اس سب کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا, ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہیں. اسی طرح یہ دعائیں حفظ البحر, اس کی تھوڑی سی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, کیونکہ گزشتہ سال بھی ہم نے نہیں کی تھی اور اس سے پہلے بھی. پرانے حضرات تو تمام جانتے ہی ہیں, یہ دعا حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے اور طریقت کے ایک بلند مقام پر فائز تھے, ان کو یہ دعا عطا ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ شیخ قاہرہ میں تشریف فرما تھے, اپنے مریدین میں فرمایا کہ مجھے غیب سے حکم ہوا ہے کہ حج کرو, لہذا میں نے حج کا پروگرام بنا لیا. مریدین تھے, انہوں نے عرض کی حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. فرمایا ٹھیک ہے چلو. ایک آدمی ہوا, دو ہوئے, تین ہوئے, ہوتے ہوتے پورا قافلہ تیار ہو گیا. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے, بحری جہاز سے سفر ہوتا تھا. چنانچہ ایک جہاز منتخب کیا گیا جس کا کپتان جو تھا یہودی تھا, اور اس کے دو بچے بھی اس کے ساتھ تھے, دو لڑکے جوان. حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مریدین یہ سب کے سب جہاز میں سوار ہو گئے. جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوا, قاہرہ سے روانہ ہوا, ابھی کچھ میل کے فاصلے پر گیا تھا کہ طوفان آ گیا اور باد مخالف چلنا شروع ہوئی, یعنی جہاز یوں جا رہا ہے اور ہوا اس طرح چل رہی, اور اتنا شدید طوفان تھا کہ جہاز آگے نہ بڑھ سکا. कई दिन इसी में गुजर गए और हज का जमाना करीब था। जितना वक्त जाया हुआ और जितना वक्त बचा वो इतना था कि जहाज नहीं पहुंच सकता था। जहाज में दूसरे हजरात भी थे, हजरत के मुरीदीन मुतकिदीन के अलावा जो मुखालिफीन थे वो भी थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि शेख तो फरमाते हैं कि मुझे गैब से हुक्म हुआ है कि हज के लिए जाओ, और गैब का हुक्म ये कैसा है कि ये तो आगे बढ़ ही नहीं सके। कुछ मील के फासले पर जाने के बाद तूफान शुरू हो गया और तूफान इतना है कि जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसी बात हुई, ये कह के हंसे मजाक उड़ाया। ये बात आपके कानों तक भी पहुंची कि मुखालिफिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर तूफान रुक भी गया तो अब दिन इतने कम रह गए हैं कि जद्दे की बंदरगाह तक जहाज नहीं पहुंच सकता। और हकीकत भी यही थी। हजरत शेख अबुल हसन अली शाजली रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब मुबारक को शदीद सदमा हुआ, रंज हुआ कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कैफियत में आप बैठे और आपको नींद आ गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। ऐसी नींद पर तो हजारों बेदारियां कुर्बान। सरकार की ज़ियारत हुई, फरमाया गम ना करो, हम तुम्हें एक दुआ बताते हैं, ये पढ़ो और अपने मुरीदीन को भी ये पढ़ाओ और फिर कुदरत का करिश्मा देखो। शेख फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआए हिज्जुल बहर इसका एक एक लफ्ज मुझे सिखाया, मुझे याद कराया। आपने लिखा नहीं, सरकार की जबान मुबारक से लेकर याद किया। और उसके बाद जब आंख खुली तो मुरीदीन को पढ़ाया और कहा कि इसको तुम पढ़ना शुरू करो। सब ने वो पढ़ना शुरू किया। आप खुद दुआए हिज्जुल बहर पढ़ रहे हैं, मुरीदीन मुतकिदीन पढ़ रहे हैं, तूफान रुक गया, बादे मुखालिफ के बजाय मवाफिक हो गई, यानी हवा का रुख उसी तरफ हो गया जिस तरफ जाना था। और इतनी तेज हवा चली कि मुमकिन नहीं था कि मुख्तसर वक्त में वहां पहुंचे। उस मुख्तसर वक्त में जहाज जद्दा की बंदरगाह पहुंचे। ये था इस दुआ का करिश्मा और नबी पाक अलैहिस्सलाम की खास निगाह करम। वो जितने भी थे मजाक उड़ाने वाले हैरान रह गए, ये क्या हो गया, ये तूफान भी रुक गया, बादे मुखालिफ भी रुक गई, बादे मवाफिक हो गई, कम मुद्दत में जहाज पहुंच गया, ये क्या हुआ। आपकी इस करामत को देखकर कसीर तादाद में जो थे गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, और वो जहाज का जो कप्तान था यहूदी उसके दो बेटे मुसलमान हो गए। उसने थोड़ा सा तरद्दुद किया कि नहीं मैं अभी नहीं होता, ये तो इत्तेफाकिया हो गया। रात हो गई, सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत का दरवाजा खुला है और लोग दाखिल हो रहे। एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, फिर उसने देखा उसके दो बेटे आए वो भी चले गए। तो इसने सोचा मैं भी जाऊं। जब इसने जाने की कोशिश की तो दरबान ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों, कहा ये तो मुसलमानों के लिए है, तुम तो गैर मुस्लिम हो। उसने कहा ये मेरे बेटे जो जा रहे हैं, कहा इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब उसकी आंख खुली तो फौरन कलमा पढ़ा और वो भी दारे इस्लाम में दाखिल हो। ये है इस दुआ की बरकत। हजरत शेख अबुल हसन अली शाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने इसके अल्फाज खुद तराशे नहीं है, एक एक लफ्ज दहने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, सरकार की जबान मुबारक से लिया है। अब आप गौर कर सकते हैं कि जो अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से अदा हो उनमें असर ना हो तो फिर किस में असर हो। ये डायरेक्ट हुजूर से ले रहे हैं और उसके बाद अपने मुरीदीन को दे रहे। फिर आपने एक जुमला ये भी फरमाया अगर मेरी ये दुआ बगदाद में पढ़ी जाती तो सुकूते बगदाद ही ना होता। बात समझ रहे हैं आप, चंगेज खान ने जो बगदाद पे हमला किया था और मुसलमानों की का कत्ले आम किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए, बगदाद को तबाह व बर्बाद कर दिया। शेख अबुल हसन शाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मेरी ये दुआ वहां पर दी जाती तो सुकूते बगदाद ही ना होता। इतनी अजीम शान ये दुआ। 800 साल से जायद अरसा हो चुका है, आज भी ये जारी है। ये इसकी मकबूलियत की दलील है। जितने भी सलासिले तरीकत हैं, कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, और इसके तहत जितने भी सलासिल हैं उन तमाम के बुजुर्गाने दीन ने इस दुआ इज़ुल बहर को पढ़ा, इसको अपने अमल में रखा, इसको याद किया, अपने मुरीदीन में आम किया और इसके जरिए फैज फैलाया। इतनी मोतबर दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने हम सब ने इसका चिल्ला मुकम्मल किया। ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है और हमारे पीर मुर्शिद की निगाह करम कि जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि आज हम ये मुकम्मल कर रहे हैं। तो जो हजरात ये चिल्ला मुकम्मल कर चुके, मैं कल्ब की गहराइयों से उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप ये ना समझे कि ये एक मामूली चीज़ है कि आपने पढ़ ली। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जिस मकाम पर यह पढ़ी जाएगी वहां भी बरकतें नाजिल होंगी। अगर किसी घर में असरात हैं, अगर कहीं नजर का असर है, अगर कहीं गुजर है, उस मकाम पर यह दुआ पढ़ दी जाए तो वो असरात भी खत्म हो जाएंगे, वो नजर भी खत्म हो जाए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोग रोजाना पढ़ रहे, चिल्ले के दौरान तो पढ़ ही रहे, वैसे भी मामूलात में हमारे जो मुरीदीन पुराने मुरीदीन हैं वो मुसलसल पढ़ रहे, तो जब मुसलसल घर में पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें वहां फैलेंगी और जितने भी असरात होंगे, जादू के हों, सिफली के हों, कैसे भी असरात हों जिन्ना के, वो इस दुआ की बरकत से सब के सब खत्म हो जाए। इसलिए इसकी अफादियत को देखते हुए, इसकी बरकतों को देखते हुए, इसके फ्यूज और बरकत को देखते हुए बुजुर्गान दीन ने इसको आम कर दिया। सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अगर वो चाहते तो अपने तक रखते कि भाई हमने पढ़ ली काफी है। नहीं, अल्लाह का वली सखी होता है, जो कुछ है जाहिर में हुआ तो लुटा दिया और बातिन में हुआ तो लुटा दिया। हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कल्बे मुबारक पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से ये अता हुई और आपने इसको फिर फैलाया और तमाम सलासिले तरीकत के बुजुर्गों ने जब इसके फ्यूज़ और बरकात देखे तो उन्होंने भी इसको अपने अमल में रखा। अब इस दुआ के पढ़ने के कई तरीके हैं, तीन तरीके तो मारूफ हैं, जहां जहां भी ये दुआ पढ़ी जाती है और जिन लोगों ने ये दुआ छापी है उन्होंने वो तीनों तरीके लिखे हैं, लेकिन चौथा तरीका जो हमारे सिलसिले में, सिलसिला अशरफिया में है, वो खुसूसन वालिदे गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने शुरू किया। 40 रोज़े अगर आपसे कहा जाए कि आम दिनों में रखें तो नामुमकिन है। जाहिर है जो एक माहौल भी चल रहा है, फिर गर्मी भी है, या अगर सर्दी भी हो तो फिर भी जाहिर है इंसान कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने काम में, दीगर चीज़ों में मसरूफ हैं। इसलिए इसको आसान करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के साथ कर दिया। इब्तिदा में यकुम रमज़ान से शुरू होता था, 29 या 30 रोज़े रमज़ानुल मुबारक के होते थे और बाद में 10 या 11 रोज़े रखकर इसे मुकम्मल कर लिया जाता। 3 साल से हमने इसमें तब्दीली की और 18 शाबान से, रमज़ान से कबल 18 शाबान से इसको शुरू कर दिया ताकि 28 रमज़ान को 40 दिन मुकम्मल हो जाएं। एक दिन इसलिए हमने पहले किया कि अगर चांद के हिसाब से 29 या 30 का चांद जैसे होता है तो उसमें कमी ना हो, ज्यादती हो जाए, एक दिन ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह उसी खुलूस के साथ, उसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ तमाम मुरीदीन मुतकिदीन ने इस पर अमल किया और ये सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। इब्तिदा में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो 3 या 4 मुरीदीन वालिदे गिरामी के जो थे वो साथ थे, फिर सिलसिला बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात मुबारक ही में ये तादाद काफ़ी हद तक पहुंच गई। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है और इस साल जिन हजरात ने पाकिस्तान में चिल्ला किया है उनकी तादाद 200 के करीब। इसके अलावा हॉलैंड में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई, अबू धाबी वगैरह, शारजा में मुख्तलिफ जगह जो लोग मौजूद हैं, अम्मान में, इंडिया में, मॉरिशस में, जहाँ जहाँ भी लोग पाकिस्तान के अलावा चिल्ला कर रहे हैं उनकी तादाद 100 है। यानी ये ऐसी तादाद है कि जो जिसको मैं नहीं कह सकता कि हतमी है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि जिनका नाम हमने लिखा नहीं या जिनका नाम हम तक नहीं पहुंच सका। ईमेल के ज़रिए फोन के जरिए उन्होंने हमसे इजाज़त ली और हमने उनको इजाज़त दी। अक्सर ने अपने नाम भेज दिए। ये मैं एक अंदाजे के मुताबिक तादाद आपको बता रहा हूँ, जो गैर ममालिक में है उनकी तादाद 100 है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो दीगर लोगों के मुरीदीन हैं उन्होंने भी हमसे इजाज़त ली और हमने फराग दिली से उनको इजाज़त दे दी और उनको इतना भी बताया कि आप अपने पीर मुर्शिद से इजाज़त लें और वो आपको इजाज़त दे दे तो आप शुरू करें। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे भी चाहिए। तो हमने कहा हमारी तरफ से भी इजाज़त। क्योंकि ये तरीका जो सिलसिला ये चल रहा है, यानी ये जो चौथा तरीका है दुआ ज़ुल्बैर का, ये हमारे ख्याल से और कहीं नहीं है किसी सिलसिले में। जो तीन तरीके मारूफ हैं वही उसी तरीके से मशाइख़ कराम कराते हैं, लेकिन इसमें आसानी ये होती है कि 40 दिन जो हैं, 30 दिन जो हैं वो रमज़ान मुबारक के साथ, 29 या 30 ये रमज़ान मुबारक के साथ हो जाते हैं, बाकी 11 रोज़े और मज़ीद रखने पड़ते हैं। या पहले रखें तो आप 11 पहले रख लें, 29 या 30 रमज़ान के साथ रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। इसके अलावा हमारे आईटी टीम के सरबरा नोमान रहमानी अशरफी साहब ने चंद साल पहले एक तजवीज़ दी थी कि दुआएं हिज़्ज़ुल बहर वेबसाइट पर डाली जाए, क्योंकि हमारे सिलसिले की अलग से छपी हुई है, ताकि लोग उसको डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ सकें। और इसके बाद एक और इनकी बेहतरीन तजवीज़ थी कि इसके मुतालिक तमाम हिदायत इशारात जो कुछ भी हैं वो भी उसमें डाल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सवालात हमारे पास आए थे चंद सालों में, गुज़िश्ता सालों में, इसके पढ़ने के मुतालिक, कि किस तरह पढ़ा जाए, बैठ के पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें या सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें, और बहुत से ऐसे भी सवालात थे कि जिनका जिक्र ही नहीं किया जा सकता, यानी अजीब किस्म के सवालात थे जो करने भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल लोगों ने किए। तो हमने वो सारे सवालात हमारे नुमान साहब ने जमा किए और फिर उन पर हमने एक नशिस की मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह वो वेबसाइट पर मौजूद है, जो आदमी उसको सुन ले सारे सवालात के जवाबात उसमें मौजूद। और अक्सर लोगों ने हमें ये बताया, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि हमारे जहन में जो सवालात थे इसके मुतालिक, तो हमने वो नशिस सुनी तो वो सारे जवाब हमें मिल गए। तो हमने यहाँ तक कोशिश की है कि किसी तरह बुजुर्गान दीन के इस फैज़ान को आगे बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख की नज़र करम और उनकी तवज्जो से ही ये अमर मुमकिन हो सका कि सिलसिला आज भी जारी है, इसका फैज चल रहा है, लोग इजाज़त ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इससे फ्यूज़ व बरकात हासिल कर रहे हैं। मुरीदीन के लिए इस सिलसिले में हिदायत ये है, बाद हजरात ये करते हैं कि सिर्फ चिल्ले के दौरान पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ी। अगर कभी आए पूछा, हाँ हजरत बस वो आगे पीछे हो गई, कितने दिन से नहीं पढ़ी, एक महीना हो गया नहीं पढ़ी, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 8 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, और जब रमज़ानुल मुबारक करीब आता है तो फिर फट से इजाज़त देने के लिए सब आते हैं, कोई ईमेल कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई यहाँ आके इजाज़त ले रहा है। कल चिल्ला करना ज़रूरी है, क्या बाद में पढ़े ना पढ़े, चिल्ला ज़रूरी है। याद रखिए चिल्ला ज़रूरी तो है, चिल्ला तो उसकी ज़कात है, बाद में पूरे साल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके वाकई फ्यूज़ और बरकत मिले, पूरे साल पढ़ें, चाहे एक मरतबा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, फिर आप देखें इसके फ्यूज़ और बरकत कितने होते हैं। इसके तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। इसी के ज़रिए बुज़ुर्गान दीन ने जादूगरों से मुकाबला किया, सिफलीगरों से मुकाबला किया, सिर्फ वजुल जिलो जिलजालन शदीदा कहकर ही दादा हुजूर किबला ने उसके जादू को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना वजुल जिलो जिलजालन शदीदा इशारा किया और उसका सारा जादू ख़त्म हो। इसी तरह दीगर वाक़यात, तो अगर आप मुसलसल पढ़ेंगे तब फ़ायदा हो, और अगर रमज़ान मुबारक में पूरे जोश व खरोश के साथ पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, पूरा साल ऐसे ही गुजर गया, फिर जब शाबान शुरू हुआ फिर आए हुजूर इजाज़त चाहिए, क्या करना है जी, चिल्ला करना, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो। तो इसलिए पहली हिदायत तो ये है कि कम से कम एक मरतबा लाजमी पढ़ना है, एक मरतबा, उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। इसके अलावा जो लोग जिस तादाद में पढ़ रहे हैं, कोई 3 दफ़ा पढ़ता है, कोई 7 दफ़ा पढ़ता है, कोई 11 दफ़ा, मुख्तलिफ तादाद जो हमने बताई है, तो उनको चाहिए कि चिल्ला खत्म होने के बाद, जैसे कि आज चिल्ला मुकम्मल हो गया, अब कल से फिर उसी तादाद में पढ़ेंगे जिसमें सारे साल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें अब पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन बता दिया जाता है, फिर बाद में आते हैं वही तादाद पढ़ लेंगे, तो फिर आदमी अपना सर फोड़ ले तो और क्या करते। जब हमने बता दिया कि चिल्ले के बाद वही तादाद रखनी जो आप सारे साल पढ़ रहे, तो आप पूछने की जरूरत नहीं, अब कोई मुझसे पूछे नहीं। तीसरी बात, इसके साथ एक और चीज है, वो है जबान की हिफाजत। एक साहब को एक वजीफा बताया, उन्होंने कहा जी एक साल हो गया मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अच्छा कुछ भी महसूस नहीं, कमाल है, इतना जबरदस्त वजीफा बताया, इसको कोई फायदा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा गौर करके बताएंगे, आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, फला चीज हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ, एक साल से मैं पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा गौर करके बताएं। उनका जायजा लेता रहा, और जब जायजा लिया तो पता चला कि गालियों की कसरत, कलमा इतना नहीं पढ़ते होंगे जितनी गालियां देते, सलाम इतना नहीं करते होंगे जितनी गालियां, हर बात में गाली, हर बात, किसी मुलाजिम को बुलाया तो उसको गाली दे दी, किसी को डांटा तो उसको गाली दे दी, किसी को जिक्र किया तो उसको गाली दे दी, जो मुखालिफ है उसके लिए गाली तैयार। फिर मैंने गौर करके उनको बताया कि असल में मसला ये है कि जो वजीफा आपको बताया गया अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और वो असर कर रहा है, लेकिन ये जो मुसलसल गालियां निकल रही हैं ये उसके असर को जायल कर रही, फहज गोई, बदजबानी, गाली, ये जबान के असर को खत्म कर देती। आप देखते हैं ना बुजुर्गान दीन अपनी जबान को कितना मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं खाते, किसी की दिल आजारी नहीं करते, फहज गोई नहीं करते, गालियां तो बहुत दूर की बात है, कोई ना जेबा कलेमा भी अदा नहीं करते। आपने अपने पीर मुर्शिद को देखा, हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, कभी उनकी जबान से कोई ना शाइस्ता लफ्ज हमने सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना, गाली तो बहुत दूर की बात है। तो वो अपनी जबानों की हिफाजत करते हैं, तो जो जबानों की हिफाजत करता है खुदा जबान में असर पैदा कर देता है, और जब असर पैदा होता है तो दुआएं कबूल हो जाती, इसीलिए दुआ कबूल नहीं होती। गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगली खा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ कैसे कबूल हो, जबान में असर होगा तब दुआ कबूल होगी। तो इसलिए आप तमाम हजरात, तमाम अहले तरीकत, अपनी जबानों की हिफाजत करें, कोशिश करें कि झूठ ना निकले, कोशिश करें कि गीबत ना हो, कोशिश करें कि किसी की दिल आजारी ना हो, कोशिश करें कि जबान से गाली ना निकले, कोई फहश, कोई नाजेबा कलिमा, कोई गंदा लफ्ज जबान से ना निकले। उससे क्या होगा, जबान इन तमाम चीजों से महफूज रहेगी, और जब जबान महफूज होगी अल्लाह का जिक्र जबान पे जारी होगा, और अल्लाह के जिक्र में ये ताकत है, अल्लाह के जिक्र की ये शान है कि जब आदमी उसका नाम मुबारक, उसका जिक्र मुबारक लेता है तो जबान पाक हो जाती है, और जबान पाक हो जाती है जबान में असर पैदा होता है, असर पैदा होता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। इसीलिए उसने कलमे में पहले अपना जिक्र रखा, बाद में अपने हबीब का जिक्र रखा, ताकि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो जबान पाक हो जाए, जब पाक हो जाए तो अब कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मेरे रसूल का नाम भी ले तो जबान पाक हो चुकी हो। तो ये चीज अपने जहनों में रखें, अगर हम इस पर कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारी जबानों में असर पैदा होगा, और इससे एक और फायदा भी होगा कि अगर आप फहज गोई नहीं करेंगे आपकी औलाद भी नहीं करेगी। बच्चा जो सुनता है वही कहता है। अब औरतें 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को लेकर आती हैं, या 3 साल के अभी उसने बोलना शुरू किया है और वो बच्चे को लेकर आ रही, क्या हुआ, ये गालियां दे रहा, ऐसी ऐसी गालियां देता है कि जो बस, अच्छा किसने इसको सिखाई गाली, घर में कोई गालियां देता है, नहीं जी नहीं हमने तो नहीं सिखाई कोई गालियां देता नहीं। मैंने कहा हो नहीं सकता, क्या माजल्ला इसके ऊपर नाजिल हो रही हैं गालियां खुद ब खुद। फिर कहते हैं हाँ इसका बाप जो है वो गाली देता, वो गुस्से में दे देता है, कभी कभी इसकी जबान से निकल जाता, तो बच्चे ने सुना, उसने कहा शायद ये कोई अच्छी बात होगी, उसने वही कह के अपनी माँ को पुकार लिया, वही कह के बाप को पुकार लिया। अब परेशान हो रहा, अरे ये क्या हुआ, तो गलती तो हमारी है, हम सही हो जाएं बच्चे खुद ब खुद सही हो जाएं। इसलिए इससे दो फायदे होंगे, आपकी औलाद की भी सही तरबियत होगी और दूसरे आपकी जबान का असर भी खत्म नहीं होगा। तो जितने हजरात दुआए हिज्जुल बैर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुआए हिज्जुल बैर पढ़ने वालों के लिए नहीं है, जो इसके अलावा भी हैं उनके लिए भी है, जो जो सिलसिले में दाखिल है उन सब के लिए है, अपनी जबानों की हिफाजत करें, कोई गलत बात जबान से ना निकले, गीबत से, झूठ से, चुगली से, दिल आजारी से, फहज गोई से अपनी जबान को रोकें, और कभी गुस्सा आए उस मकाम से हट जाइए, उस मकाम से हटते, गुस्से में बात निकल जाती है ना, गलत बात जबान से निकल गई, कोई गलत कलमा निकल गया, तो उस जगह से हट जाए, खामोशी इख्तियार करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। खामोशी बेहतरीन चीज है, दो आदमी लड़ रहे हैं, एक खामोश हो जाए दूसरा खुद ब खुद चुप हो जाएगा। मियां बीबी में लड़ाई इसलिए होती है, एक बोलता है दूसरा भी, दूसरा बोलता है तो ये पहला भी, दोनों बोलेंगे लड़ाई हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। एक खामोश हो जाए दूसरा खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। और मसला यह है कि खामोश रहना ही बड़ा मुश्किल है। अगर आपसे कहें कि एक घंटे खामोश रहो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। घर में जाएंगे तो बेगम पूछेंगे क्या हुआ भाई, क्यों खामोश, खैरियत तो है? दोस्तों में जाएंगे ओके क्या बात है भाई, बोल ले रहा कि तबीयत खराब है क्या? और कहीं जाएंगे रिश्तेदारों में, कहें क्या हुआ, आप नाराज हैं, आप बोल ले रहे? लोग खामोशी नहीं रहने देते, घर वाले भी नहीं रहने देंगे। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने ये नहीं कहा खामोश रहो, उन्होंने कहा इसको दुआए हिज्जुल बैर बता दो, जितनी देर पड़ेगा खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। इसको अल्लाह उस्समत बता दो, जितनी देर पड़ेगा इसकी जबान खुद ब खुद पाक रहेगी। ये है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ, नसीहत के साथ। बुजुर्गान दीन ने इसी तरह बुलाया। अगर आपसे कहते थे कि आपको चिल्ला करना है और 40 दिन रोजे रखने हैं, सारे भाग जाते, हुजूर ये कैसे करेंगे? इसीलिए हजरत अशरफुल मशाइख ने दुआए हिज्जुल बैर की फजीलत बयान फरमाई, एक मरतबा बताया एक मरतबा पढ़ लो, जब देखा इस काबिल हो गया, कहा चलो इस रमजान में चिल्ला भी कर लेना, भाई तुम 30 रोजे तो रखते ही हो, 10 और रख लेना। उन्होंने कहा ठीक है, सब लग गए। बिल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, ये है बुजुर्गाने दीन का तरीका। तो उन्होंने इस मामले में रिसर्च किया और बड़े तरीके के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें जारी हैं। और तीसरी चीज जो है, जो जबान के असर को जाया करती है, वजाइफ को जाया करती है, इबादात को जाया करती है, वो है रिज्क हराम। हराम लुकमा अगर आपके मुंह में गया, आपके पेट में गया, आपकी इबादत जाया हो जाए। इसलिए कोशिश करें हत्तुल इम्कान कि कोई भी आपकी रोजी में हराम का एक शायबा तक नहीं होना चाहिए। काजी हमारी रोजी तो बिल्कुल पाक है, वो एक जरा सा गलत काम कर लिया था, वो तो छोटा सा था, छोटा सा काम था, वो कर लिया था। तो हमने कहा अगर दूध के कढ़ाओं में एक बूंद पेशाब की डाल दो, पियोगे? नहीं, एक बूंदी तो है, क्या हुआ, सारा तो दूध है, एक बूंदी तो डालिए। नहीं जी, नहीं हम नहीं पियेंगे। तो इसी तरह एक बूंद के बराबर भी अगर कोई हराम चीज आ जाए तो उसको भी हटा दो। अगर 1 करोड़ क्या 1 अरब रुपया भी मिल रहा हो और आपको पता हो कि इसके अंदर हराम की आमेजिश है, उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले 1 करोड़ की बरकतें आपके रिजक में डाल देगा। अगर इसको ये समझ के छोड़ देंगे, सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नहीं है, अगर नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल रहा है, उसको लात मार दीजिए, और 1 पैसा हलाल का मिल रहा है उसको ले लीजिए, उसमें इतनी बरकत होगी कि वो 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने आपके सामने बयान की, बल्कि 4 चीजें, 1 चीज मैं भूल गया। सबसे पहली चीज 5 वक्त नमाज, दूसरी चीज दुआए हिज्जुल बैर पर इस्तेकामत, तीसरी चीज जबान की हिफाजत, और चौथी चीज रिज़्क़ हलाल का हुसूल। ये 4 चीजें आप अपने जहन के अंदर रख लें और इन 4ों पर अमल करें, फिर देखें कि हजरत शेख अबुल हसन अल शादली रहमतुल्लाह अलैह की कैसी निगाहें करम होगी, और जितने बुजुर्गान दीन पढ़ते हैं उन सब की निगाहें करम। اور اس میں ایک بات اور ہے، بس وقت مختصر ہے، وہ بات میں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. جو آدمی جو وظیفہ پڑھتا ہے، یعنی یہ کہ طریقت کی بات بتا رہا ہوں، یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ابو ذر قبلہ سے ڈائریکٹ ان کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کی ہوئی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا ایک آدمی ایک وظیفہ پڑھتا ہے اور وہ کہیں گیا اور کوئی اور بھی وہ وظیفہ پڑھتا ہے، روحانی طور پر خود بخود کشش دونوں میں ہوگی. اور اگر وہ ولی کامل ہے تو سمجھ جائے گا یہ کیا پڑھتا ہے، اور اگر آپ کے اندر اتنی تاثیر ہے آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا پڑھتا ہے. ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے. آپ دعائیں ذی البحر مسلسل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کسی مقام پر گئے اور کوئی اور بھی پڑھتا ہے اور اس کے اندر بھی اتنی استعداد ہے، وہ بھی سمجھ جائے گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے، روحانی تعلق دونوں میں قائم ہو جائے گا. اور جو مسلسل پڑھتا رہے گا تو شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم خود بخود ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ میری یہ دعا، میرا یہ فیض عام ہو رہا ہے. اور جب بھی آپ پڑھیں گے ان کی روح پاک کو ثواب پہنچائیں گے. جب یہ تحفے کی تو صورت میں ثواب ان کے پاس جائے گا. اگر آپ کسی کو تحفہ دیں تو خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی کو تحفہ دے دیا، عطر دے دیا، کوئی گھڑی دے دی، کوئی پین دے دیا، خوش ہو گیا، دیکھو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے مجھے تحفہ دیا. تو وصال کے بعد یہ ظاہری چیزیں تحفہ نہیں ہے، وصال کے بعد جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تحفہ صرف اور صرف وصال ثواب ہے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں. تو جب یہ وصال ثواب کا تحفہ حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائے گا، ان کی نگاہ کرم پورے مجمع کی طرف ہوگی، کس کس کی طرف سے یہ تحفہ آیا، کس کس کی طرف سے یہ تحفہ آیا، جس کی طرف سے آیا اس پہ نگاہ کرم ہو جائے. تو اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم نے کیا. یہ بھی ایک بات ایک اچانک ذہن میں آ گئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے چلا کیا، لوگوں میں جا کے بتا رہے ہیں، جان جان کے جا رہے ہیں، پتہ چلے ان کا روزہ ہے، کیا ہوا جی کھائیں؟ نہیں جی نہیں، روزہ ہے، میں چلا کر رہا ہوں نا، میں تو حضور بہر کا چلا کر رہا ہوں. اچھا وہ درگاہ شریف سے اجازت ملی پھر گئے یہ کھا رہے؟ نہیں نہیں میرا تو پرہیز ہے، میں انڈا تھوڑی کھا سکتا ہوں، میں چلا جو کر رہا ہوں. گوشت کھا لے؟ نہیں میں تو چلا کر رہا ہوں، میں کیسے کھا سکتا. چلے کی اتنا رٹ لگائی اتنے کہ وہ چلا چلی ہو گیا، وہ پھر ختم ہی ہو جائے گا، اس کا پھر ثواب نہیں ملے گا، پھر ریاکاری آ جائے گی. تو ریاکاری نہیں کرنی ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا پیر جانتا ہے، بس ختم، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا کیا، جو کچھ کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم اور آپ کیا کریں گے، جو بزرگان دین کر گئے، جو غوث اعظم نے کیا، جو مجدد الف ثانی نے کیا، جو داتا گنج بخش نے کیا، جو حضرت قطب ربانی اور حضرت اشرف المشائق نے کیا، ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے جو محنت انہوں نے کی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو بھی ہوا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا، وہ قبول کر لے اس کی مہربانی. یہی اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے جو چلا کیا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے پیر کی نگاہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہم نے کر لیا، اب اللہ رب العالمین قبول فرما لے اس کی مہربانی. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ یہ پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور خصوصاً اپنے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.